आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।
हेलो, गुड इवनिंग। 15 मार्च बुधवार के दिन भर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। संसद के बजट सत्र का दूसरा हिस्सा हंगामे के भेंट चढ़ा हुआ है। सरकार और विपक्ष के हो हल्ले के केंद्र में दो शख्स हैं, राहुल गांधी और गौतम अदानी। ऑपोजिशन लीडर्स ने अदानी मामले को लेकर आज संयुक्त मोर्चा भी निकाला दिल्ली की सड़क पर, तो आज सबसे पहले बात इसी पर होगी। उधर लाहौर में भारी बवाल के बीच आज पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी टल गई है, तो आज के घटनाक्रम पर पाकिस्तान के ही जर्नलिस्ट से बात होगी और जानेंगे कि आगे वहां हालात कैसे रहने वाले हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन का एक साझा समझौता हुआ है, ऑकस डील इसे कहा जा रहा है। इस समझौते की घोषणा के बाद चीन और रूस तिलमिला उठे हैं, तो इस डील की परतें खोलेंगे। मेडिकल इंश्योरेंस को क्लेम करने के लिए अस्पताल में भर्ती होना जरूरी है क्या? इंश्योरेंस कंपनियां ये कहती हैं, लेकिन कंज्यूमर फोरम तो ऐसा नहीं मानता है। एक ऐसा ही मामला सामने आया है, तो मेडिक्लेम की शर्तों में क्या बदलाव करने का वक्त आ गया है और मेडिकल इंश्योरेंस लेने से पहले क्या सतर्कता बरतनी जरूरी है, एक्सपर्ट्स इस बारे में जानेंगे। और रोज की तरह आखिर में भौचक भी आएगा, लेकिन अभी सुनते हैं 60 सेकंड्स हेडलाइंस सूरज कुमार से।
शुक्रिया जमशेद। दिल्ली सरकार ने पुरानी एक्साइज पॉलिसी 6 महीने के लिए बढ़ाई, आधिकारिक आदेश आया। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को लगा एक और झटका, पुराने साथी और राज्य में स्वास्थ्य मंत्री रहे दीपक सावंत ने छोड़ा साथ, शिंदे गुट में शामिल हुए। लाहौर हाईकोर्ट से पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को राहत, अगले आदेश तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। उमेश पाल हत्याकांड मामले में प्रयागराज के 3 नेताओं पर मिली भगत का शक, एक को अतीक ने किया था कॉल। उद्धव बनाम शिंदे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उठाया राज्यपाल के फैसले पर सवाल, कहा विश्वास मत नहीं बुलाना चाहिए था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ब्रिटेन दौरे के बाद भारत लौटे, संसद सत्र में हो सकते हैं शामिल। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती को मिली राहत, केस में मिली जमानत। यूक्रेन ने लगाया रूस पर आरोप, कहा पुतिन ने काला सागर में अमेरिकी ड्रोन दुर्घटना से युद्ध को और बढ़ा दिया है।
यह है दिन भर, मैं हूं जमशेद कमर सिद्दीकी। कहने को संसद चल रही है, लेकिन चल नहीं पा रही है। वजह क्या है? इसका जवाब यह है कि आप किस तरफ से पूछ रहे हैं। सत्ता पक्ष कह रहा है कि राहुल गांधी माफी मांगे, वहीं विपक्ष अदानी मसले पर जेपीसी यानी कि संयुक्त संसदीय समिति की मांग पर अड़ा हुआ है। इधर लोकसभा राज्यसभा कुछ घंटे चलाने की कोशिश के बाद स्थगित हो गई। उधर विपक्षी खेमे के 16 राजनीतिक दलों ने आज पैदल मार्च करते हुए ईडी दफ्तर जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पहले ही उन्हें रोक दिया। राज्यसभा में कांग्रेस के नेता और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 200 सांसदों के सामने 2000 पुलिस बलों के तैनात होने की बात कही और अदानी विवाद पर जांच की मांग को दोहराया।
आज अदानी के घोटाले के मामले में मेमोरेंडम देने के लिए आप डायरेक्टर से मिलने जा रहे हैं, लेकिन सरकार हमको विजय चौक के पास भी नहीं जाने दे रही और रोक लिए है। आप देख भी रहे हो, तो हम हैं 200 लोग यहाँ पर, लोग हैं हम कम से कम 2000 लोग पुलिस, तो हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं।
वहीं बीजेपी की नेता और मंत्री स्मृति ईरानी इन सब से इतर विदेश में राहुल गांधी के बयान पर माफी मांगने की बात कहती रहीं।
राहुल गांधी ने विदेशी ताकत आके भारतीय संसदीय परंपरा को छिन्न भिन्न कर दें, ये आह्वान किया है। आज मैं राहुल गांधी से कहना चाहती हूँ, संसद से भागने की बजाय आकर संसद में माफी मांगे, क्योंकि अपमान उन्होंने देश की संसद, देश की संविधान और देश के वोटर का किया है।
सवाल है कि अदानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर अभी कहां कहां जांच हो रही है और विपक्ष की ये जो जेपीसी की मांग है, इसको मानने में सरकार को दिक्कत क्यों है? पूछा मैंने दिल्ली में आज तक रेडियो रिपोर्टर मौसमी सिंह से।
देखिए सारा मामला जेपीसी की मांग को लेके अड़ा हुआ है, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि जेपीसी होनी चाहिए गठित और पूरे अडानी मसले की जांच होनी चाहिए, और वहां पे जो सत्ता पक्ष है वो किसी भी हालत में अडानी पर जेपीसी को लेकर राजी नहीं होगा। और यही वजह है कि आज आप देखिए जिस तरह से विपक्ष कह रहा है कि ना हमें बोलने दिया जा रहा है सदन के भीतर ना सदन के बाहर, और इसलिए हम लोग ईडी की तरफ मार्च करेंगे क्योंकि जेपीसी की मांग स्वीकार हो नहीं रही है और ईडी जांच करने रही है। पर सरकार किसी भी हालत में जेपीसी की मांग इसलिए नहीं मानेगी क्योंकि सरकार को लगता है अडानी वाला मामला जो है निराधार है और प्रधानमंत्री की छवि धूमिल करने के लिए विपक्ष ये पूरा स्वांग रच रहा है। यही वजह है कि एक अहम की लड़ाई जेपीसी की मांग को लेकर छिड़ी हुई है।
एक सवाल और था, विपक्ष की एकजुटता की बात होती रही अडानी मसले पर, लेकिन टीएमसी उधर अलग ही प्रदर्शन करती हुई दिखी और वो भी गैस की बढ़ती कीमतों पर। ये मोर्चाबंदी एक अभूत पहली नहीं लग रही आपको?
तो देखिए टीएमसी का अगर आप मसला देखें, टीएमसी लगातार राहुल गांधी और जो है अभिषेक बैनर्जी के बीच में जिस तरह से तूतू मैं हुई, अभिषेक बैनर्जी ने उनके खिलाफ ट्वीट किया, राहुल गांधी ने टीएमसी को आड़े हाथ लिया, खूब खरी खोटी इन लोग ने सुनाई, तो टीएमसी को लगता है कि हम कांग्रेस के पीछे क्यों पिछलग्गू क्यों बने, उसको लगता है कि हम अपने आप में एक सियासी दल है, हमारा वजूद और वर्चस्व है, तो किसी भी तक टीएमसी और कांग्रेस नजरें नहीं मिला रही है। वहीं पे आम आदमी पार्टी की अपनी सियासी मजबूरी है, अब एनसीपी भी नजर नहीं आती है, तो उसकी भी कुछ खास वजह हो सकती है, क्या शरद पवार नाराज है, ये सब बातें हैं जिनको अर्ज करना पड़ेगा। जब तक ये एड्रेस नहीं होंगे तब तक विपक्ष की यूनिटी जो है वो बिल्कुल सतह पर नजर आती है, मजबूत नजर नहीं आती।
शुक्रिया मौसमी सिंह। कई हफ्तों से खबर चल रही है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान गिरफ्तार होंगे। 3 गैर जमानती वारंट उनके खिलाफ जारी हैं। लाहौर में उनके घर पुलिस भी भेजी गई लेकिन इमरान की गिरफ्तारी नहीं हो सकी क्योंकि हजारों की संख्या में उनके समर्थक पुलिस रेंजर्स से भिड़ गए। आंसू गैस के गोले दागे गए, लाठीचार्ज हुई लेकिन समर्थक टस से मस नहीं हुए। वहीं लाहौर कोर्ट ने कल सुबह 10 बजे तक इमरान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इन्हीं सब के बीच इमरान खान ने पाकिस्तान के नाम संबोधन दिया और कहा कि वह 18 मार्च को खुद अदालत में पेश होंगे लेकिन सत्ता में बैठे लोग उन्हें जबरदस्ती गिरफ्तार कर उन्हें मार देना चाहते हैं। जब इमरान खान ये बात कह रहे थे तब उनकी टेबल पर आंसू गैस के शेल्स रखे हुए थे।
पाकिस्तानी सोच रखे ये तो कोई दुश्मन ऐसे करे मुल्क के साथ, ये जो हरकतें हो रही हैं वो जो बाहर लड़के हैं ये मेरी नहीं सुन रहे, जब उनके ऊपर ये इंतजार हो रहा है और ये जो शेलिंग हो रही है वो मेरी नहीं अब बात सुनते, अब मेरा कोई कंट्रोल उनके ऊपर नहीं है, और जिस तरह की यह बमबारी और ये जो ये सबके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अपनी अदलिया से सबसे पहले कि देखिए उम्मीद सिर्फ अब हमें आप पे रह गई है।
इमरान खान पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी खजाने के बेशकीमती गिफ्ट्स कौड़ियों के दाम पर खरीद कर उन्हें अरबों रुपयों में बेचा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें 29 मार्च तक गिरफ्तार करने का ऑर्डर जारी किया था जिसके बाद कल इमरान ने गिरफ्तारी वारंट रद्द करने की याचिका दायर की थी मगर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब पीटीआई समर्थकों के साथ करीब 22 घंटे संघर्ष के बाद लाहौर पुलिस ने इमरान खान की गिरफ्तारी टालने का फैसला किया है और इसका कारण लाहौर में 15 से 19 मार्च तक होने वाले पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 को बताया है। तो आज लाहौर में पूरा घटनाक्रम क्या रहा बता रही हैं पाकिस्तान में सीनियर जर्नलिस्ट मोना आलम।
देखिए बिल्कुल कोई शक नहीं है, 24 घंटे से ये एक पता नहीं ड्रामा ही मैं ऐसे कहूंगी और क्या कहूंगी, दोनों तरफ से कोई समझ नहीं आ रही। जीबी पुलिस भी बल्कि कहते हैं वहां पर पहुंच गई है और वो इमरान खान साहब की तरफ से है। स्टेट वर्सेस इट्स ओन पीपल, स्टेट वर्सेस स्टेट, ये दोनों सिनेरियोज हमें वहां पर नजर आ रहे हैं। पेट्रोल बॉम्ब इनके प्रोटेस्टर्स की तरफ से वहां पर फेंके गए हैं, वहां इमरान खान साहब ने भी कुछ फुटेजेस लगाई हैं कि डायरेक्ट फायर भी उनके प्रोटेस्टर्स पर किया जा रहा है। और ये बिल्कुल बात गलत है कि वो कुछ इस तरह के लोग हैं कि वो उनके कोई गार्ड्स हैं या ये कि जिनको टिकट की उम्मीद है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। वहां बिल्कुल खवातीन बच्चे वगैरह भी मौजूद हैं, मतलब ये कहना बिल्कुल सरासर गलत है कि वो सिर्फ वही लोग हैं। अगर सिर्फ हैंडफुल लोग होते फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी ना, क्योंकि पुलिस ने या पंजाब पुलिस एंड इस्लामाबाद पुलिस ये दो पुलिस वहां पर है, रेंजर्स को भी उन्होंने बुलाया था, हर अपना एड़ी चोटी का जोर ये लोग लगा चुके हैं। और अगर इतनी हैंडफुल लोग होते तो फिर तो कोई बात ही नहीं थी। स्टेट वर्सेस स्टेट भी नजर आ रहा है, स्टेट वर्सेस इट्स ओन पीपल भी नजर आ रहा है, और ये बहुत डेंजरस और अलार्मिंग किस्म के सीन्स हैं जो कि लाहौर से इरप्ट हो रहे हैं। लेकिन देखें, ये बात बिल्कुल सही है कि इमरान खान साहब इस पूरी सिचुएशन को बड़ी आसानी से अवॉइड कर सकते थे। एक आसिफ अली जरदारी साहब की वीडियो चल रही है जिसमें वो बड़े वॉलंटरली अरेस्ट दे रहे हैं अपना। इमरान खान साहब ये जो सिविल वॉर लाइक सिचुएशन है, इसका यही हल है ना कि वो अपनी गिरफ्तारी दे देते, तो अपनी गिरफ्तारी वो दे दें, क्योंकि इमरान खान साहब और जो लीडर्स वगैरह होते हैं वो इन चीजों से नहीं डरते हैं कि गिरफ्तारी और नो गिरफ्तारी, और वो खुद ये बात करते रहे हैं कि जो कानून है वो अमीर और गरीब के लिए एक जैसा होना चाहिए। तो मुझे लगता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इमरान खान साहब ऑल्सो टू वॉक द टॉक, अपनी बारी पे ये चीज करके दिखाएं।
मोना, अभी तो इमरान की गिरफ्तारी टल गई है, लेकिन अगर हम आगे की बात करें तो पाकिस्तान के हालात कैसे नजर आते हैं, क्योंकि सितंबर अक्टूबर के महीने में चुनाव भी होने वाले हैं।
एक तो आई डोंट थिंक इमरान खान के साथ इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का कोई अच्छा ताल्लुक है, कोई भी फैक्शन एस्टेब्लिशमेंट का। मेरा नहीं ख्याल है कि इमरान खान साहब को आजकल कोई उनको अप्रूव करता है, क्योंकि थोड़े दिन पहले इमरान खान साहब खुद ही कह रहे थे कि मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, सबसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन अगर कोई नहीं करना चाहता तो फिर मैं क्या करूँ। ये बात है, इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर जो प्रेजेंट रिजीम है उनको बैक कर रही है, और इमरान खान साहब के जो सिंपथाइजर्स थे देयर नो मोर इन द एस्टेब्लिशमेंट, और इनके गवर्नमेंट के भी वैसे माशाल्लाह से बड़े सिंपथाइजर्स अब पाए जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट को जो चुनाव है वो सूट नहीं करते, और वो अपनी तरफ से हर चीज करना चाहते हैं, हर दफा कह चुके हैं कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास पुलिस नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, हर बात कह चुके हैं। बट द प्रॉब्लम इज एटलीस्ट जो दो प्रोविंशियल असेंबलीज जो इमरान खान ने तोड़ी हैं उनके तो इनको करवाने पड़ेंगे इलेक्शंस, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा क्लियर उसमें ऑर्डर है, और आई डोंट थिंक वो उसको डिविएट कर सकते हैं। दो प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शंस तो होंगे, लेकिन मैं एक बिल्कुल एक एप्रीहेंशन एक रखती हूँ कि इस दफा जो इलेक्शन ईयर है शायद वो इसी वजह से पोस्टपोन हो जाए कि भाई दो इलेक्शंस तो हमने असेंबलीज के अभी अभी कराए हैं, तो हाउ डू वी डिसॉल्व देम ऑल ओवर अगेन जस्ट आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, थोड़े महीनों बाद फिर उनको डिसॉल्व कर दें और फिर जनरल इलेक्शंस कराएं जिसमें नेशनल असेंबली के भी इलेक्शंस हों और सारे सूबों में भी इलेक्शंस हों। तो वो प्रोबेबली इस चीज को एक प्रिटेक्स्ट बनाकर जनरल इलेक्शन को डेफर करने की बात कर सकते हैं।
आज तक रेडियो से बात करने का शुक्रिया। पाकिस्तान से मोना आलम। चीन के बढ़ते दबदबे पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने मिलकर एक डिफेंस डील की है, AUKUS। तीनों देशों के नाम के इनिशियल्स से ये टर्म इजाद किया गया है, मसलन ऑस्ट्रेलिया का ए, यूनाइटेड किंगडम का यूके और यूनाइटेड स्टेट्स के यूएस को मिलाकर बनाया गया है इसको। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज और ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक परसों अमेरिका के सैनडियागो में एक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे। इसके बाद ऐलान किया गया कि ऑस्ट्रेलिया एडिलेड में 8 परमाणु पनडुब्बियों का एक बेड़ा बनाएगा। ब्रिटेन और अमेरिका इसमें उसकी मदद भी करेंगे। परमाणु पनडुब्बी की जरूरत की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पास अभी न्यूक्लियर पावर सबमरीन नहीं है। इन सबमरीन्स की ये खासियत है कि ये कई हफ्तों तक सतह पर आए बिना पानी के नीचे खामोशी से चल सकती हैं और दुश्मन देश ये जान भी नहीं सकेगा कि ये पनडुब्बी कहां पर हैं। चूंकि ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए परमाणु पनडुब्बियों के मिलने से ऑस्ट्रेलियाई नौसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा होने की संभावना है। लेकिन इस ऑकस डील से चीन और रूस भड़के हुए हैं। दोनों देशों ने इसे उकसावे और तनाव को बढ़ाने वाला कदम बताया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि तीनों देश गलती और खतरे के रास्ते पर चल रहे हैं। वहीं रूस ने कहा है कि ऑकस समझौता से आने वाले सालों में टकराव के हालात पैदा होंगे। तो इस डील से चीन और रूस क्यों चिंतित हैं, पूछा मैंने इंटरनेशनल मामलों के जानकार और दिल्ली के JNU में प्रोफेसर अमिताभ सिंह से।
देखिए, सबसे बड़ी चिंता तो उन दोनों को इसलिए भी है कि साउथ चाइना सी जो है वो चीन अपना एक आधिपत्य वाला क्षेत्र मानता है, उसके चलते उसमें अगर किसी तरह का उनके लिए व्यवधान हो कि वो टकराव का क्षेत्र बढ़ जाए तो उनके लिए ये समस्या पैदा होगी कि इसका काउंटर कैसे किया जाए। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि चीन ये चाहता है कि किसी भी तरह से इस रीजन पर उसका आधिपत्य रहे और आने वाले दिनों में जब भी टकराव की स्थिति हो तो उसका वो काउंटर कर सके। लेकिन हम सब जानते हैं कि चीन के पास ये टेक्नोलॉजी जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है वो उपलब्ध है, और उस पूरे क्षेत्र में या यूं कहें पूरे विश्व में ब्लू वाटर नेवी के लिए चीन सबसे बड़ी ब्लू वाटर नेवी है। तो आप समझ सकते हैं कि उसका विरोध उनके हिसाब से लाजमी है। हालांकि रूस को इससे बहुत ज्यादा मतलब तो नहीं है, लेकिन चूंकि अभी चीन और रूस की दोस्ती बढ़ती जा रही है, खासकर अभी जो यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में, तो इसके चलते उनका ऑब्जेक्शन आ रहा है और वो जाहिर है वो आगे भी ऑब्जेक्शन करेंगे इस तरह का कोई भी मूव होगा तो।
अमिताभ जी, जो बाइडेन ने इस बात पर जोर दिया है कि ऑकस डील इंडो पैसिफिक रीजन को स्वतंत्र रखने के लिए उठाया गया है, इंडो पैसिफिक रीजन इतना अहम क्यों है जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से?
देखिए, इंडो पैसिफिक रीजन एक तो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग रीजन है, क्योंकि इससे नॉर्थ अमेरिका और चीन जो सबसे बड़ा निर्यातक बन चुका है दुनिया में, उसको एक्सेस के लिए साउथ चाइना सी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो वो उस पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है और किसी भी तरह से दूसरी शक्तियों को वहां नहीं आने देना चाहता है। दूसरा, जो मलक्का स्ट्रेट से नीचे जो आप हिंद महासागर की तरफ बढ़ते हैं, तो वो बड़ा एक कंस्ट्रिक्टेड रूट है जिस पर वो नहीं चाहता है किसी भी तरह का कंट्रोल किसी भी दूसरे पावर को हो और वो स्वतंत्र रहे, और अमेरिका ऑस्ट्रेलिया दोनों ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरह इन पर, इस रीजन पर अपना आधिपत्य जमा के रखे, क्योंकि आने वाले दिनों में भी हो सकता है कि टकराव की स्थिति ऑस्ट्रेलिया से खास करके इनकी बने, क्योंकि एक तरफ तो अमेरिका है ही, दूसरी तरफ ये जो रहेंगे उसका एक तरह से यूं कहा जाए कि इनका आधिपत्य किसी तरह से कम ना हो।
ऑकस डील में जो दो देश शामिल हैं, यूएस और ऑस्ट्रेलिया, वो क्वाड का हिस्सा भी हैं, और इन दोनों ग्रुप्स का मकसद चीन के जो प्रभाव है उसका असर उसे कम करना है, उसे चैलेंज करना है। फिर एक ही मकसद के लिए अलग अलग ग्रुप बनाने की जरूरत क्यों है?
बहुत डिफरेंस है। देखिए, ऑकस जो है वो कलेक्टिव सिक्योरिटी है, सामूहिक सुरक्षा का एक मंच है। क्वाड जो है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, सिर्फ डायलॉग का एक प्लेटफॉर्म है जहां चार राज्य, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, ये मिलते हैं, तो उसका कोई एक न ऑफिस है न कोई एक तरह का अरेंजमेंट है बातचीत करने का। लेकिन ऑकस में जिस तरह से नेटो है उस तरह से इन्होंने बनाया है कि आगे चल के अगर व्यवधान हुआ चीन द्वारा, मिलिट्री इंटरवेंशन हुआ, तो उसका प्रतिकार कर पाएंगे। तो ये दोनों में बहुत अंतर है। लोगों को ये लगता है कि दोनों समान है, लेकिन क्वाड किसी भी तरह से कलेक्टिव सिक्योरिटी का मंच नहीं है, सामूहिक सुरक्षा का मंच नहीं है, और ना भारत के रहते हुए इसके बनने की संभावना है।
आज तक रेडियो से बात करने का बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अमिताभ सिंह। अब आखिर में एक मेडिकल क्लेम की बात करते हैं। कहानी गुजरात के वडोदरा की है, लेकिन इस मामले और इस पर कंज्यूमर फोरम के फैसले से हर वो शख्स खुद को जोड़ सकता है जिसने कोई मेडिकल इंश्योरेंस लिया हुआ है और उसके नियम और शर्तों के पचड़े में वो उलझा हुआ है। तो वडोदरा में रमेश चंद्र जोशी नाम के एक शख्स ने अपनी पत्नी का इलाज कराया, खर्चा कुल बैठा 44,468 रुपए। वो पहुंचे इंश्योरेंस कंपनी के पास, लेकिन कंपनी ने जोशी के दावे को खारिज कर दिया। कंपनी का तर्क था कि मरीज को क्योंकि लगातार 24 घंटे तक भर्ती नहीं किया गया था, इसलिए वो क्लेम नहीं चुकाएंगे। जवाब में जोशी साहब ने कंज्यूमर फोरम का दरवाजा खटखटाया। अब उस फोरम ने इस मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है। फोरम ने कहा है कि मेडिकल इंश्योरेंस को क्लेम करने के लिए जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती ही किया गया हो, या यूं कहें कि मरीज अगर 24 घंटे से कम समय के लिए भी अस्पताल में भर्ती रहा हो तब भी वो मेडिकल इंश्योरेंस का हकदार है। साथ ही उपभोक्ता फोरम ने इंश्योरेंस कंपनी को रमेश चंद्र जोशी को भुगतान करने का भी आदेश दे दिया। ये फैसला क्यों अहम है पूछा मैंने उजाला सिग्नेस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के फाउंडर एंड डायरेक्टर डॉक्टर शुचिन बजाज से।
आई थिंक बहुत ही नुअंस्ड और सोचा समझा हुआ फैसला है। देखिए, मेडिकल जो ट्रीटमेंट्स हैं, मेडिकल नॉलेज है, बहुत एडवांस्ड हो रहा है, दिन प्रतिदिन एडवांस्ड हो रहा है, और अब हम लोग डे केयर सर्जरीज पर ही स्ट्रेस करते हैं। बड़ी से बड़ी सर्जरी, कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी भी हम चाहते हैं कि डे केयर में हो जाए, सुबह सुबह पेशेंट एडमिट हो और दोपहर शाम तक घर हम भेज दें उनको। बट क्योंकि इंश्योरेंस का ये एक ओल्ड स्टैंडिंग फ्रेमवर्क था कि मिनिमम 24 घंटे का एडमिशन चाहिए, तो कई लोग जिनको जरूरत भी नहीं थी उनको एडमिट होना पड़ता था इस वजह से कि भाई उनको मेडिक्लेम से अगर रीइंबर्समेंट या क्लेम्स चाहिए तो। सो आई थिंक ये बहुत सिग्निफिकेंट है, बेटर फैसिलिटीज देने में हेल्प करेगा हॉस्पिटल्स की।
क्या इसको आधार बनाकर और भी लोग क्लेम कर सकते हैं सुचिन साहब?
जी बिल्कुल, ये एक बहुत सेमाइनल फैसला है, मेरे ख्याल से बहुत सारी आगे जजमेंट्स में और लिटिगेशन में बहुत यूजफुल होगा। और ये जिन जिन लोगों के क्लेम्स रिजेक्ट हुए हैं इस बेसिस पे कि ये डे केयर है, इसमें आपने एडमिशन नहीं लिया, इसमें आपने ओपीडी बेसिस पे ट्रीटमेंट करा लिया, उन सबको बहुत रिलीफ मिल सकता है इससे और अननेसेसरीली आपको हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जो ओपीडी में ही ठीक हो सकती हैं या डे केयर में ठीक हो सकती हैं, तो उसके लिए हॉस्पिटल्स का लोड भी कम होगा, पेशेंट केयर बेटर होगी। तो बहुत सारी ऐसी जो क्लेम्स जिनके रद्द किए गए हैं वो वापस अपने इंश्योरेंस एजेंसीज को ये वाला फैसला दिखाकर वापस रीअप्लाई कर सकते हैं अपने क्लेम्स के लिए।
सुजन साहब, क्लेम खारिज करने की और बड़ी वजह क्या होती है और एक पॉलिसी खरीदने वाले को क्या खास सतर्कता बरतनी चाहिए?
देखिए, हम सब ने देखा है अगर किसी को भी कभी क्लेम करना पड़ा हो इंश्योरेंस, तो पेशेंट हो चाहे डॉक्टर हो चाहे हॉस्पिटल्स हो, सबको ही चक्कर लगाने पड़ते हैं और बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पर इनिशियली साइन करा लिया जाता है। इतना सारा पेपर वर्क होता है, पेशेंट्स भी आंख बंद करके साइन कर देते हैं, तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस कवर नहीं करते हैं। कुछ डिजीजेस में होता है कि भाई 2 साल बाद ही कवर होंगी, कुछ डिजीजेस जैसे प्रेगनेंसी डिलीवरी वगैरह इंश्योरेंस रिन्यू नहीं करते हैं कई बार। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से पेशेंट्स को प्रॉब्लम उठानी पड़ती है और क्लेम लेने में डिफिकल्टी होती है, और उनमें से एक ये कंडीशन थी कि 24 घंटे का एडमिशन मिनिमम चाहिए, जो कि फाइन प्रिंट में लिखा होता है और हम लोग देख नहीं पाते हैं। तो अगर आप कोई भी इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, चाहे फिजिकली चाहे ऑनलाइन, तो ये सारी चीजों का ध्यान रखें कि पूछने में हिचकिचाएं ना, क्लैरिफिकेशन लें जो भी आपको इंश्योरेंस बेच रहा है उनसे कि किस किस कंडीशन में आपको क्लेम प्रोसेसिंग में मुश्किल हो सकती है, क्लेम्स लेने में मुश्किल हो सकती है, और अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे, ये मेजर पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे, तो आपको क्लेम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे।
ये थे उजाला सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के फाउंडर एंड डायरेक्टर डॉक्टर सुचिन बजाज। और अब चलते हैं भौंचक की तरफ।
धरती गोल है, मगर गोल तो फुटबॉल के खेल में होता है, लेकिन साहब खेल तो राजनीति में भी होता आया है, और अब तो इसका बड़ा भाई खेला भी आ गया है। खेला से याद आया कि अभी एक हफ्ते पहले ही होली खेले थे अपन। एक होली होती है लठमार, ब्रज में खेली जाती है, पर वो तो आपने कई बार सुना होगा, देखा भी होगा, पर क्या आपने कभी लड्डू मार होली खेली है? यही तो है भौंचक खबर आज की। लठमार होली की अपार सफलता के बाद पेश है बिहार की लड्डू मार होली, और ये हुई है आरजेडी और बीजेपी विधायकों के बीच। तो आज भौंचक में खबर इसी लड्डू मार होली की। बीजेपी के एक विधायक हैं लखिंद्र पासवान, जनाब ने विधानसभा का माइक तोड़ दिया और सदन से 2 दिन के लिए बदर कर दिए गए। इसके विरोध में बीजेपी ने सदन का बहिष्कार कर रखा है और बाहर धरने पर बैठे थे बीजेपी के विधायक। इसी बीच दिल्ली से एक खुशखबरी उड़ती हुई आई आरजेडी के विधायकों तक। पता चला कि लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती को सीबीआई कोर्ट से जमानत मिल गई है। फिर क्या, खुशी से आरजेडी विधायकों की बाँछें खिल गईं और आनंद फानंद में लड्डू मंगवा लिए गए। फिर आरजेडी विधायकों ने आओ देखा न ताओ धरने पर बैठे बीजेपी नेताओं का मुंह मीठा करवाने तड़ाक से पहुंच गए। लेकिन पहले से ही मुंह फुलाए बैठे भाजपा वालों ने लड्डू लेने से इनकार कर दिया। राजद वाले भी कहां पीछे हटने वाले थे, वो तो मानो अड़े हुए थे कि आज न छोड़ेंगे बस हम झोली। इसी आपाधापी में भाजपा के एक विधायक उठे और लड्डू उछलते हुए बाकी विधायकों के भी सिर और शरीर पर गिर गया। खींचतान में पटना के बीजेपी विधायक अरुण कुमार सिन्हा को कुर्ता फाड़ होली का एक्सपीरियंस कराने का काम किया गया। पुराने जमाने के विद्वान कहते हैं कि जो दुश्मन लड्डू खिलाने से मर जाए तो उसे जहर खिलाने की क्या जरूरत है, मगर बीजेपी वालों ने कहा कि आरजेडी के लोग उन्हें जबरन जहरीला लड्डू खिलाने का काम कर रहे थे, नहीं खाया तो शरीर पर फेंक गए और खींचतान करने लगे। मगर मैं कहता हूं कि लोकतंत्र में लड्डू की महिमा का बखान ठीक से नहीं हो पाया है, क्योंकि अपने यहाँ चुनाव के बाद का सबसे जरूरी तत्व है लड्डू। रिजल्ट वाले दिन क्विंटल और मन में तैयार कराए जाते हैं, जीत गए तो बांटे जाते हैं और हारने पर चुपके से खपाए जाते हैं। शिव मंगल सिंह सुमन की पंक्तियां अक्सर कोट होती हैं, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, ये नेताओं से ज्यादा लड्डुओं पर लागू होती है, क्योंकि जब तक लोकतंत्र रहेगा लड्डू रहेगा। पॉलिटिक्स के पुराने चावल कहते हैं कि राजनीति में कटुता आ गई है, इसलिए सरकार को चाहिए लड्डू को और ज्यादा बढ़ावा दे, बल्कि एक राष्ट्रीय मोदक आयोग बनाना चाहिए और कम शुगर वाले लड्डू लॉन्च किए जाएं। ताकि गोल मटोल होते जा रहे लीडरान की सेहत दुरुस्त रहे और फिल्मों में सीटी मार के बाद लड्डू मार जैसे गानों का स्पेस बन सके। कुमार केशव, आज तक रेडियो।
तो आज के दिन भर में इतना ही। बाकी बुधवार को आज तक रेडियो के ट्विटर हैंडल पर बेबाक बुधवार की बैठकी भी लगती है रात 9 बजे से, तो आइए आप भी। और हमारा टेक वाला पॉडकास्ट भी आता है आज, उसे भी सुनिएगा। और अगर कुछ कहना सुनना हो तो मेल कीजिए radio@aajtak.com पर। व्हाट्सएप नंबर भी है हमारा 9953233303। आप इस पर अपना वॉइस नोट सीधे भेज सकते हैं। तो इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है कुमार केशव ने, साउंड मिक्सिंग थी अमृत रेजी की। जमशेद कमर सिद्दीकी के साथ थे आप। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।